Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
भगवान की मधुरता का वर्णन करते हुए लिखा है आधारम मधुरम
उनकी सारी चीजें, उनके अधर, उनके वेणुवादन, उनका हंसना, उनका चलना, उनका गमनम, हर चीज मधुर्य माधुर्य से भरी है। और माधुर्य का मतलब है मधुर, स्वीट, स्वीटनेस। तो भगवान कृष्ण का इतना माधुर्य का निलय कृष्ण भी हैं, जो अपना जो धाम है माधुर्य धाम में वो निवास करते हैं और उनकी जो लीलाएं बहुत अधिक मधुर हैं जो कृष्ण प्रेमी हैं उनके लिए। तो ऐसे ही एक महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, जो कृष्ण के बहुत अधिक प्रिय भक्तों में से एक हैं, तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भी आज आविर्भाव है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य। तो भगवान अपने लीलाओं के द्वारा मधुरता का, स्वीटनेस का विस्तार करते हैं और उनके बाद उसी मधुरता को आगे पहुंचाने के लिए हम भगवान अपने भक्तों को नियुक्त करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो अवतारीय विग्रह हैं, बहुत अधिक वदान्याय हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, उनकी वदान्यता या उनका दानशीलता क्या है कि वो सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया, संन्यास के बाद उन्होंने कटवा में संन्यास ग्रहण किया और नित्यानंद प्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जैसे उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, उसी क्षण वो वृंदावन की ओर चलने लगे कि वृंदावन जाना है संन्यास के बाद। और महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन में इतने मग्न हो गए हैं कि उनके जो संन्यास गुरु हैं केशव भारती भी अपना आश्रम छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के संग में निकल रहे थे वृंदावन की ओर। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार केशव भारती तो वापस गए हैं, नित्यानंद प्रभु और चंद्रशेखर आचार्य और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि संन्यास के बाद वृंदावन जाना इनके लिए उचित नहीं है, इनको तो अभी शांतिपुर हम ले जाएंगे जहां अद्वैत आचार्य का घर है। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को धोखा देते हुए चैतन्य महाप्रभु को जो बाल बाल रास्ते में मिलते थे तो वो पूछते थे वृंदावन कहाँ है, तो नित्यानंद प्रभु ने पहले ही सबको बता के रखा था कि ये जो सन्यासी आएगा इसको बताना कि ये जो गंगा नदी है ये गंगा नहीं है, ये यमुना है, आप सही रास्ते से जा रहे हो वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको कई बार धोखा दिया है, एक तो उनका आगे चल के दंडा तोड़ दिया और अभी यहाँ वृंदावन न ले जाकर उनको नवदीप शांतिपुर ले जा रहे हैं। तो महाप्रभु तो चलते चलते भावावेश में आकर नृत्य करते थे, हरि नाम का उच्चारण करते थे और वृंदावन की भावना में थे कि वृंदावन जा रहा हूं। तो ये सब ग्वाल वालों ने कहा कि ये यमुना ही है, आप सही दिशा में जा रहे हो। और पहुंचते पहुंचते जब आगे वो गए स्नान, ये देखा गंगा को और स्नान करने लगे यमुना का भावना में, तो उसी समय वो क्या देखते हैं कि वहां अद्वैत आचार्य नाव लेके खड़े हैं और उन्होंने अपने साथ कोपिन कुछ वस्त्र लेके आए हैं सैफ्रॉन चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो महाप्रभु ने कहा कि हे अद्वैत आचार्य आप यहाँ वृंदावन में, तो उन्होंने कहा आप जहां हो वही स्थान वृंदावन में है, तुम्हें ये वृंदावन नहीं है, ये तो शांतिपुर है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर अद्वैत आचार्य के साथ उनके घर में निवास करने लगे कुछ दिन, और उस समय सारे नवदीप वासियों को बुलाया गया था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो रात को ही अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े थे संन्यास के लिए और भक्त लोग हाँ, क्योंकि नवदीप में जैसे सुबह होते थे सारे वैष्णव चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सुबह सुबह आते थे और फिर गंगा स्नान करते थे। तो लेकिन सारे वैष्णव जब आया है देखा कि चैतन्य महाप्रभु है नहीं, वो तो चले गए छोड़कर, तो बहुत दुखी थे। फिर उन सबका पुनर्मिलन होता है अद्वैत आचार्य के घर में और कई दिनों तक हरिनाम संकीर्तन होता है और चैतन्य महाप्रभु की माता सच्ची माता को वहां भी वहां लाया जाता है। वो कहती है कि जब तक ये उत्सव चलता रहेगा, सारे वैष्णव यहाँ होंगे, मेरा जो पुत्र निमाय यहाँ होगा, तब तक मैं सारे वैष्णव के लिए कुकिंग करूंगी, मैं कुकिंग करने की सेवा। तो महाप्रभु ने संन्यास धारण किया था, इनके इतने घुंघराले लंबे गोल्डन वर्ण के बाल थे, बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, तो संन्यास के समय में काट दिया, एक लंबी चोटी रखी गई थी और सैफरन वस्त्र उन्होंने धारण किए थे। तो सच्ची माता ने देखा तो रोने लगे और चैतन्य महाप्रभु जो निमाय हैं, अभी उनका नाम पढ़ा था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी नहीं, नवदीप में उनका नाम निमाय पंडित था और भी जब उनका संन्यास दीक्षा हुआ तब उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य। तो उनको देखा तो उनकी माता के पास जब महाप्रभु पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपनी माँ को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो भावुकता में आकर मैंने संन्यास ग्रहण किया है, मुझे ये भी पता नहीं कि संन्यास का मतलब क्या है, क्यों संन्यास ग्रहण करना चाहिए, ये शरीर आपका है, आपके द्वारा ये मुझे शरीर प्राप्त हुआ है और आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो महाप्रभु उनके गोद में बैठे और फिर उन्होंने कहा आगे चलकर, सच्ची माता सोच रही थी, उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्र ने संन्यास लिया है और इसको मैं कहूंगी कि नवदीप में घर में रहो तो सारे लोग उनकी निंदा करेंगे, तो ये उचित नहीं है। तो फिर सच्ची माता ने सोचा और कहा कि मेरे जो पुत्र है, जो वैष्णव ने पूछा कि निमाई को जगन्नाथपुरी में निवास करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी ज्यादा दूर नहीं है, एक ही घर के दो अलग अलग कमरे हैं, नवदीप और जगन्नाथपुरी, यहां से वैष्णव जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए जगन्नाथ का और वहां से वैष्णव आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं सदैव निमाई महा चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना करूंगी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ ही दिनों में वहां से निकल पड़ते हैं और जाकर जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जब वो निवास कर रहे थे तभी भी उनका हृदय वृंदावन की ओर भाग रहा था और जगन्नाथपुरी ऐसा धाम है जहां वृंदावन का स्मरण सर्वाधिक हो उठता है। वहां जो बालों के पर्वत है जिसको चटक पर्वत कहा जाता है, वो चटक पर्वत चैतन्य महाप्रभु को गोवर्धन का स्मरण दिलाते थे। महाप्रभु कभी कभी उनको देखकर भागने लगते थे, भावावेश में अश्रुपात करते थे, रोमांच कंप आदि उनके शरीर में ये सारे भाव के लक्षण प्रकट होते थे। उस चटक पर्वत को देखकर गोवर्धन की भावना उनके अंदर भर उठते थे और फिर जब वो नील वर्ण का समंदर को देखते थे तो उनको यमुना का स्मरण उठता था और जब गुंडीचा मंदिर के गार्डन्स को देखते थे, जगन्नाथपुरी गार्डन से भरा हुआ सिटी है, तो चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के अलग अलग निकुंजों का स्मरण उठता था। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सदैव वृंदावन के भ्रम या वृंदावन के भावना में निवास करते थे और वो सोचते थे कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा। तो एक दिन जब वो निकलना चाहने लगे कि वृंदावन जाऊंगा तो हर कोई उनके साथ जा रहा था, सारे डिवोटीज, सारे वैष्णवाज। फिर महाप्रभु निकले अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ निकलते निकलते चैतन्य चरितामृत में बहुत लंबा वर्णन है उनकी वृंदावन यात्रा का 2-3 अध्यायों में। और महाप्रभु जब गए, आखिरी जो उनका डेस्टिनेशन था, बल्कि इस पहले वृंदावन यात्रा का उद्देश्य था रूप और सनातन गोस्वामी पर अपनी आयत की कृपा करना, और कोई उद्देश्य नहीं था। महाप्रभु बंगाल होते हुए वृंदावन जाना चाहते थे, उनके साथ हजारों संख्या में भक्त थे। और महाप्रभु जब चलते थे तो जहां जहां उनका चरण पड़ता था वहां वहां हजारों गांव के लोग आकर मिट्टी को ले लेते थे। तो सारे रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे जहां जहां महाप्रभु ने अपना चलना किया वृंदावन की ओर। फाइनली जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिले, जीव गोस्वामी छोटे से बालक थे, तो रूप सनातन पर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, उनको नामकरण किया, उनको दीक्षा प्रदान की। और फिर चैतन्य महाप्रभु वापस कनाई नटशाला वो स्थान है, आज भी वहां इस्कॉन का एक सेंटर है, बहुत ही सुंदर स्थान है गंगा के किनारे। तो कनाई नटशाला में बहुत अधिक ड्रामाज होते थे, कनाई कृष्ण के कारण वहां कृष्ण के ऊपर ड्रामाज होते थे, इसलिए कनाई नटशाला। तो वहां महाप्रभु आए शाम के समय में, और सुबह के समय जैसे हुआ चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के संग, उनके साथ नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर और कई सारे अन्य भक्त थे। तो वहां सुबह सुबह उन्होंने सामने देखा एक पद्मा नदी बह रही थी, पद्मावती नदी या पद्मा नदी, तो जो गंगा की ही एक शाखा है। गंगा जब बंगाल में जाती है तो चार भागों में विभाजित होती है, चार या तीन भागों में अलग अलग नाम धारण करती है और समुद्र को मिलती है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु सुबह अपने भक्तों को उन्होंने उनके साथ संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने क्या किया, जोर जोर से वो उच्चारण करने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, और आंसू बह रहे थे उनके आंखों से, कभी कभी गिर रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, और ये नाम नरोत्तम नरोत्तम उनके मुख से सदैव ये नाम उच्चारण हो रहा था चैतन्य महाप्रभु के। तो सारे भक्त सोचने लगे कौन है ये नरोत्तम नाम का आज इतना उच्चारण क्यों कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो फिर नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर आदि भक्त वार्तालाप करने लगे, उन्होंने सोचा जरूर चैतन्य महाप्रभु का प्रिय पार्षद होगा, जो अवतरित होने वाला है, कौन सा वो स्थान है जिस स्थान में ये वैष्णव प्रकट होगा, कौन सा वो पिता होगा या कौन सी वो माता होगी ऐसे महान वैष्णव को अपने गर्भ में धारण करेगी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वास्तव में भविष्यवाणी कर रहे थे अपने महान भक्त के प्राकट्य के बारे में। तीन ही लोगों के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही भविष्यवाणी की है। दो लोगों का नाम तो उन्होंने जन्म लेने से पहले रख दिया। तो तीन वैष्णव कौन थे, एक तो ये थे नरोत्तम दास ठाकुर, और दूसरे थे श्रीनिवास आचार्य, और तीसरे थे श्रील प्रभुपाद, जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा मोर सेनापति भक्त जाए तथा पापी तापी दूर देशे छाड़ी जाए, कि जो पापी लोग हैं इस भारत वर्ष को छोड़कर दूर के देशों में भी चले जाएंगे, लेकिन उनको कृष्ण भावना देने के लिए मेरा जो भक्त है वो जाएगा। तो ये मोर सेनापति भक्त जाएगे तथा वहां जाएगा। तो प्रभुपाद के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सेनापति भक्त के रूप में उनकी उपमा, उनको ये डेजिग्नेशन, उनको ये पदवी दी है, उपाधि दी है। तो ऐसे तीन वैष्णव थे जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। और भगवान का स्वभाव यही है, भगवान अपने गुणों से भी अधिक अपने भक्तों के गुणों की महिमा को बढ़ाते हैं। हम देखते हैं अर्जुन, भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सर्वेसाची, सर्वेसाची का मतलब है जो लेफ्ट हैंड से भी बाण चलाने का सामर्थ्य रखता है उनको सर्वेसाची कहा जाता है। तो अर्जुन तो बहुत पावरफुल वॉरियर थे, क्षत्रिय थे, योद्धा थे, लेकिन बहुत अच्छे भक्त थे। तो भगवान ने कहा तुम निमित्त मात्र बनो, मैंने ही सबका संहार किया है। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा तुम ये भी घोषणा करो नमे भक्त्या प्रणश्यति। तो भगवान बोल सकते हैं लेकिन भगवान ने कहा मैं कभी कभी बोलता हूँ लेकिन पालन नहीं करता हूँ, उल्लंघन करता हूँ अपने वचनों का। तो ये अर्जुन तुम ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, नगाड़े बजाते हुए ड्रम बजाते हुए, ताकि सबको पता चले जो भक्त की महिमा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर का नामों का उच्चारण करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपनी जो लीला है वो अप्रकट करने वाले थे कुछ ही दिनों में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मेरे अप्रकट होने के बाद भी ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये तीव्रता से बढ़ते रहना चाहिए पृथ्वी पर। उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए मेरे जैसा सामर्थ्य रखने वाले वैष्णवों को जन्म लेना होगा। चैतन्य महाप्रभु ने एक ही समय में, पहले तो श्रीनिवास आचार्य ने का प्राकट्य करवाया, उनके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, उस समय यह आंदोलन बहुत पावरफुल था, और फिर फाइनली हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने जाने के बाद इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए इन वैष्णवों को अवतरित कराते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का ये नाम उच्चारण सारे भक्तों ने सुना, तो और वो भी चैतन्य महाप्रभु एक तक एक गांव की ओर देख रहे थे पद्मा नदी के उस पार, उसको कई नाम गढ़ेरहाट भी कहा जाता है या खेतुरी ग्राम, तो फिर या फिर गोपालपुर शायद, जहां कृष्णचंद्र दत्त ये राजा थे और जो पुरुषोत्तम दत्त उनके एक भाई थे, ये दोनों महान वैष्णव थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नंदनंदन प्रभु आदि ने पूछा कि कौन है ये नरोत्तम, तो महाप्रभु ने कहा कि एक ऐसा वैष्णव जन्म लेगा जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ये सारे टीम कीर्तन करते करते गंगा पद्मा नदी में चले गए, पद्मा नदी में स्नान किया, और स्नान करते हुए इतनी सारी जोर जोर से लहरें आने लगी, बाढ़ आने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो प्रेम है कृष्ण प्रेम उस पद्मा नदी को प्रदान किया, पद्मा नदी पर्सनिफाइड वो देवी प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपना जो प्रेम है वो तुम्हारे पास दे रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, तो तुम क्या करो, आगे एक भक्त प्रकट होगा और तुम्हारे अंदर स्नान करने के लिए आएगा, तब उसको तुम ये जो प्रेम है वो प्रदान करो। तो पद्मा नदी ने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगी उस वैष्णव को। महाप्रभु ने कहा कि जैसे वो वैष्णव तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा उसी क्षण तुम्हारे अंदर आपलव या विप्लव हो जाएगा, बहुत सारे लहरें जोर जोर से आने लगेगी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अपना जो प्रेम है वो वहां स्टोर करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, प्रेम पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम भगवान से चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रेम को स्टोर कर दिया आगे आने वाले अपने प्रिय पार्षद नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। और फिर जब ये राजा कृष्ण चंद्र दत्त के घर एक भक्त ने जन्म लिया, वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो जब जन्म लिया तो ये जो नरोत्तम है बचपन से ही उनकी माँ उनको नारू 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 कह के पुकारा करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो बहुत छोटे से बालक थे और उनका अन्न प्राशन संस्कार होने वाला था, पहली बार बालक को लगभग 6 महीने का होता है तो अन्न प्राशन करवाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा या वैष्णवों के हाथों से, जिससे उस बालक के अंदर भगवत भक्ति जागृत हो जाती है। तो जब इनका अन्नप्राशन होने वाला था तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर, ब्राह्मणाज और बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और राइस बनाया था और वो खिला रहे थे, लेकिन ये बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा था, खा ही नहीं रहा था। तो राजा कृष्णचंद्र दत्त को टेंशन आ गया, सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अन्नप्राशन के लिए और ये बालक खा ही नहीं रहा है। तो वहां का जो ब्राह्मण था उन्होंने कहा, आप क्या करो, जो आपने ये अन्न उनको ग्रहण करवा रहे हो इसका भोग नहीं लगाया होगा, आप इस अन्न को पहले भोग लगाओ और फिर इनको खिला कर देखो। तो जैसे भोग लगाया ब्राह्मणों में और प्रसाद को लाया और नरोत्तम दास ठाकुर को खिलाया, छोटे से बच्चे थे तो उन्होंने तुरंत खाया। तो उनके राजा, उनके जो पिता थे राजा कृष्णचंद्र दत्त, उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरा जो पुत्र है कृष्ण प्रसाद के अलावा किसी और चीज को ग्रहण नहीं करेगा, वो रूल बन गया उनके घर में नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जब वो स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे तो उनका मन केवल एक ही चीज में लगा रहता था, वो थे चैतन्य महाप्रभु। उनके अलावा वो किसी और चीज के बारे में ना सुनना चाहते थे ना बोलना चाहते थे। तो जैसे ही नरोत्तम स्कूल से वापस आता था तो उनके गांव में एक बहुत महान भक्त थे और उनका अनुराग विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए था, कृष्णदास। वो महाप्रभु का वर्णन करने में बहुत अधिक रुचि रखते थे। तो नरोत्तम स्कूल से आते ही उनके घर जाया करता था और केवल जो चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद और कई सारे वैष्णवों के बारे में सुना करते थे। तो सुनते सुनते बचपन से ही उनका अनुराग बहुत अधिक तीव्र हो गया महाप्रभु के लिए, और इतना अधिक हुआ कि उनको लगा कि अभी मुझे महाप्रभु से मिलना चाहिए। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु रात को उनके स्वप्न में आते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे नरोत्तम, तुम बहुत अधिक चैतन्य महाप्रभु से या कृष्ण से, वृंदावन से विरह की अनुभूति कर रहे हो, ऐसे श्री चैतन्य देव ने आपके लिए कृष्ण प्रेम पद्मा नदी में स्टोर करके रखा है, तुम जाओ और उसको प्राप्त करो, तुम्हारी सारी जो मनोवांछा है उनकी पूर्ति होगी। तो नरोत्तम एक दिन सुबह गए पद्मा नदी में स्नान करने के लिए। जैसे वो गए स्नान करने के लिए तब उन्होंने जैसे ही पद्मा नदी में अपने चरण रखे तो वो जो नदी है वो बहुत सारे तरंगे प्रकट करने लगी, बाढ़ सा महसूस होने लगा और वो नदी प्रकट होकर उनको वो कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। तो इनका सांवला वर्ण था, काले से थे थोड़े से, लेकिन अभी उस कृष्ण प्रेम को उन्होंने धारण कर लिया तो अभी बिल्कुल गौर वर्ण के हो गए थे नरोत्तम। और फिर सुबह से वो बच्चा गायब था उनके घर से, कृष्णचंद्र दत्त उनके माता दोनों उनको ढूंढ रहे थे कहाँ है नरोत्तम। तो शाम को पता चला किसी के द्वारा कि वो तो पद्मा नदी के तट पर खड़ा है, रो रहा है, और किसके लिए रो रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो जब माता पिता आए उनकी माँ ने देखा, सोचा ये मेरा ही बेटा है लेकिन इसका वर्ण बदल गया है, गोरा वर्ण का हो गया है। तो फिर अभी उन्होंने कहा नारू, नारू मीन्स नरोत्तम, तो अभी वो बिल्कुल शांत हो गया था, गौर वर्ण का हो गया था। उसने कहा क्या हुआ, सबको लगा कि इसको भूत ने पकड़ लिया है जिसके कारण ये बिल्कुल शांत हो गया है। और अविरल अश्रुधारा उनके आंखों से प्रवाहित हो रही थी और निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर की दशा देखकर उनके पिता ने सोचा कि भूत ने झपट लिया है, तो ओजा ओजा ना ओजा को बुलाया। तो ओजा ओजा आया और उसने कहा कि इस बालक को जो सियार है, सियार एक कोई तो एक प्राणी है, जाकल भी होगा सियार भी होगा, जिसको मार के उसका सूप पिलाया जाए तो ये बालक ठीक हो जाएगा। अब नरोत्तम दास के कानों में ये बात गई, उन्होंने कहा पिता मैं तो सब छोड़कर चला जाऊंगा, यदि आप मेरे लिए किसी प्राणी का वध करोगे तो वो उचित नहीं है। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर हाँ घर में रहने लगे, अभी युवक थे वो, धीरे धीरे युवा हो गए, लेकिन उनका मन, बल्कि राजकुमार है, लेकिन राजकुमार होने के बाद भी भौतिक सुविधा संपन्नता होने के बावजूद भी उनका मन हाँ बिल्कुल घर की कार्यकलापों में नहीं लग रहा था। तो एक दिन उनके पिताजी कुछ राजकाज जो कार्य है उसके लिए बाहर चले गए, तो उस समय फिर नरोत्तम ने सोचा कि अभी अकेले माँ घर में है, घर से भागना बड़ा इजी हो जाता है कि नहीं, माँ बड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, इतना वो पावरफुल नहीं होती। तो फिर नरोत्तम ने देखा कि कुछ राजा के दो तीन सैनिक आए थे कुछ काम के लिए, तो नरोत्तम ने कहा मैं इनके साथ चला जाता हूँ, कुछ काम करके वापस आ जाता हूँ। तो उन सैनिकों के साथ ही चले गए, जैसे गए फिर से वो वापस आए नहीं, वहां से उन्होंने दौड़ लगाना शुरू की। दौड़ते दौड़ते नरोत्तम बिल्कुल भागने लगे वृंदावन की ओर, अकेले भाग रहे थे वृंदावन की ओर। भागते भागते बनारस होते हुए कई स्थानों को उन्होंने विजिट किया, जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए थे वृंदावन जाते समय, और फिर फाइनली वो वृंदावन पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि वृंदावन में रूप गोस्वामी आदि नहीं है, रूप गोस्वामी ने शरीर त्यागा है, सनातन गोस्वामी नहीं है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही कहा था कि तुम जाओगे तो वहां मेरे एक महान पार्षद है, भक्त है, जिनका नाम लोकनाथ गोस्वामी है, तुम जाकर लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा दीक्षा प्राप्त करो। लोकनाथ गोस्वामी को भी पहले ही महाप्रभु ने बोला था, जब नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए भी नहीं थे तब लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था और कहा था कि तुम जब वृंदावन जाओगे तो आगे चलकर एक महान भक्त तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करेगा, उनका नाम होगा नरोत्तम, और वो ऐसा कीर्तन करेगा कि उसके कीर्तन से इवन जो स्टोन है, पत्थर है, या जो उड़ लकड़ है, वो भी उनके कीर्तन से पिघलने लगेगा, इतना मधुर कीर्तनिया होंगे नरोत्तम दास ठाकुर। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर पहुंचते हैं, वहां उनका स्वागत जीव गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य आदि करते हैं, फिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलते हैं, लोकनाथ गोस्वामी को मिलते हैं, और वो लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा की याचना करते हैं कि आप मुझे आपके चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी बड़े विनम्र वैष्णव थे, इवन जब कृष्णदास कविराज जब चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे थे तो कृष्णदास कविराज अलग अलग वैष्णवों के पास गए कि आप मुझे आशीर्वाद दो, हाँ और मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ये चैतन्य चरितामृत की रचना कर पाऊंगा। तो अलग अलग वैष्णव उनको आशीर्वाद देते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, और जब ये लोकनाथ गोस्वामी के पास गए तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि तुम तो इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने जा रहे हो, लेकिन क्या करो, उस ग्रंथ में मेरा कुछ नाम नहीं आना चाहिए, मेरा वर्णन मत करना, हम तो चाहते कि हमारा नाम सब जगह आ जाए, है कि नहीं, छोटे पैम्पलेट में भी आ जाए, ग्रंथ में आ जाए तो, और वो भी इतने सालों के लिए रहे, हाँ तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मेरे नाम का वहाँ वर्णन मत करना, इसलिए लोकनाथ गोस्वामी के बारे में हमें ज़्यादा सुनने के लिए या जानने के लिए नहीं मिलता। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी को नरोत्तम दास ठाकुर ने अप्रोच किया कि मुझे आपका आश्रय प्रदान करो, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं आपको दीक्षा देने की योग्यता नहीं रखता, तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर रोते थे और उन्होंने एक ही निश्चय किया कि मेरे आध्यात्मिक गुरु तो लोकनाथ गोस्वामी हैं, बल्कि लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु ने भी बोला था, लेकिन फिर भी जो महान वैष्णव हैं उनका ये स्वभाव होता है उत्तम हैया अपना के माने अधम, उत्तम होकर भी अपने आप को वो अधम या निम्न सोचते हैं। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी ने उनको मना किया, इसका आवाज बढ़ाइए जरा लाउड कीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी जब उनको मना कर रहे थे दीक्षा देने के लिए, तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर रोज इसी भावना में रहते थे कि कैसे मैं उनको प्रसन्न करूं, क्या सेवा करने से मैं उनकी अनुकंपा को प्राप्त कर सकता हूं। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी रोज सुबह के समय में शौच क्रिया करने के लिए जाते थे जंगल में। तो नरोत्तम दास ठाकुर और ये जब जाते थे तो देखते थे कि हर रोज उसी स्थान में जाते थे और वो जो स्थान है बिल्कुल साफ रहता था, क्लीन रह जाता था। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने उसकी वायर को ना ऊपर लगा दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उस स्थान में जाकर हर रोज वो सफाई करते थे एक झाड़ू लेकर, और फिर रोया करते थे उस झाड़ू को अपनी छाती में लगाते हुए कि हे लोकनाथ कब आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कृपा की वर्षा करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो सेवा है वो निरंतर जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो करते जा रहे थे। और फिर एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि कौन वो व्यक्ति है जो निरंतर इस प्रकार की सेवा करता है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने एक दिन झाड़ियों में छुप के देखा कि मेरे जाने के बाद जो शौच क्रिया का स्थान है उसका सफाई होता है, वहां फ्रेश मिट्टी को रखा जाता है। तो इन्होंने देखा कि नरोत्तम है वो राजकुमार जो इस प्रकार की सेवा कर रहा है और जिस झाड़ू से सफाई करते हैं वो झाड़ू को अपने छाती में लगाते हुए रो रहे हैं। तो ये देखकर नरोत्तम दास ठाकुर के इस भावना को, सेवा को, तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत दयाद्र हो उठते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। और फिर उन नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाते हैं और फाइनली एग्री हो जाते हैं उनको दीक्षा देने के लिए। अभी भी दीक्षा नहीं दे रहे थे, अभी उन्होंने कहा कि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में ये वर्णन किया है कि एक शिष्य को गुरु को देखना चाहिए और गुरु को भी लगभग एक साल तक शिष्य को देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। तो उन्होंने उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि रोज हरि नाम का उच्चारण करो, 100,000 नामों का उच्चारण करो या जप करो। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर हरि नाम का उच्चारण करने लगे और लोकनाथ गोस्वामी ने फाइनली उनको दीक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी कि ये जो शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर वो उनके अकेले शिष्य थे और एक में वो शिष्य थे। उनके बाद उन्होंने ना किसी को दीक्षा दी ना कोई शिष्य स्वीकार किया। तो जब जीव गोस्वामी ने छह गोस्वामियों के ग्रंथों को पहुंचाने का प्रयास किया था बंगाल, हाँ, पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी स्थापित किया था नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, जीव श्यामानंद पंडित। तो जब चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार जीव गोस्वामी ने ये सेवा की थी, इन तीन वैष्णवों को भेजा था बंगाल और ओडिशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने जो गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी से परमिशन लिया कि जीव गोस्वामी ने मुझे ये सेवा दी है। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए हैं और उनको कहा कि सदैव तुम यहाँ से जाओगे वृंदावन से तो सदैव हरि नाम का उच्चारण करना और अपने आप को वैष्णवों की सेवा में रखना। और वैष्णव के संग में बने रहना। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब बंगाल चले जाते हैं तो वर्णन आता है कि बंगाल जब वो गए फिर से वो वापस नहीं आते वृंदावन, वहीं वो निवास करने लगते हैं अपने गांव खेतुरी में, और फिर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि अलग अलग वैष्णव अप्रकट हो रहे हैं। तो उनके विरह के कारण नरोत्तम दास ठाकुर एक दिन जंगल में प्रवेश करते हैं अकेले, और केवल रोते रहते हैं वैष्णव का स्मरण करते हुए, विशेष रूप से श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु आदि का, और फिर उनके मुख से कई सारे गीत निकलते हैं जिनको हम गाते हैं, जिन गीतों का संचय है प्रार्थना नाम से, और दूसरा है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने ये दो ग्रंथ लिखे थे। जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से पूछा कि किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि उस व्यक्ति के पास केवल दो आने होने चाहिए या दो रुपीज होने चाहिए। तो किसी ने पूछा क्या होगा उससे दो रुपीज या दो आना है, तो उन्होंने कहा दो आना है आपके पास या दो रुपीज है तो आपको मार्केट में जाओ और वहां नरोत्तम दास ठाकुर के दो ग्रंथ खरीदी करो, और बस उतना ही इनफ है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के मठ में कोई ब्रह्मचारी ज्वाइन करता था या कोई भक्त, उसको सबसे पहले नरोत्तम दास ठाकुर का ये जो ग्रंथ है प्रार्थना, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज देते थे, और उसके साथ साथ रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत भी उनको प्रदान करते थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के गीत इतने अधिक प्रिय हैं श्रील प्रभुपाद को कि श्रील प्रभुपाद ने रोज हमें उच्चारण करने के लिए प्रदान किया है। रोज हम श्री गुरु की प्रशंसा के लिए सुबह श्री गुरु चरण पद्म का उच्चारण करते हैं गुरु वंदना में, गुरु पूजा में। जब प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे तो एक दिन श्रील प्रभुपाद दोपहर के समय में अकेले प्रभुपाद गाया करते थे हारमोनियम में वैष्णव भजन कीर्तन। तो एक दिन प्रभुपाद ने अपना कुर्ता निकाला, विंडो को खोला, अकेले रूम में गाते जा रहे थे। फिर कुछ भक्त आ गए, यमुना देवी दासी और पुरुषोत्तम दास और कई वैष्णव भक्त। तो प्रभुपाद ने यमुना दासी को पूछा कि तुम्हें वैष्णव गीत अच्छे लगते हैं, उन्होंने कहा हाँ प्रभुपाद। तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा गीत आपका फेवरेट है, तो उसने कहा कि मेरा फेवरेट गीत क्या है, शिक्षाष्टकम चेतो दर्पण मार्जनम, यमुना देवी दासी ने कहा। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद आपका कौन सा फेवरेट गीत है, तो प्रभुपाद ने कहा नरोत्तम दास ठाकुर का हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हे हरि, मैंने ये मनुष्य देह मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी आपका भजन नहीं किया है, राधा कृष्ण की सेवा में नहीं लगा हूं, जान बुझ कर मैंने विष का पान किया है। श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों से प्रीति रखते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को दीक्षा दिया था, तो कई सारे ब्राह्मण बहुत अधिक ईर्ष्या करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक दिन एक स्कूल के सामने से गुजर रहे थे, तो एक ब्राह्मण टीचर ने कहा ये शूद्र जा रहा है, ये शूद्र है, थोड़ा सा ना कॉमेंट करते हुए बोलने लगे। और नरोत्तम दास ठाकुर तो बड़े विनम्र थे, वो किसी के इस अपमान पूर्ण वचनों को लेते नहीं थे, और वो निकल गए। फिर दूसरे दिन देखा कि उस ब्राह्मण जो टीचर था उसको कुष्ठ रोग हो गया और बहुत परेशान होने लगा, कई सारी दवाइयां खाने लगा, जितनी दवाइयां खा रहा था उतनी बीमारी बढ़ते जा रही थी। फिर किसी को पूछा कि क्या मेरे इस बीमारी का कारण है, उन्होंने कहा कि आपने जो महान वैष्णव नरोत्तम है उनके प्रति अपराध किया है, अपराध पूर्ण वाणी का इस्तेमाल किया है। तो फिर वो और सबने कहा कि नरोत्तम दास ठाकुर बड़े दयालु हैं, वो अपराध को नहीं लेते, वो क्षमा कर सकते, तुम जाओ उनके चरणों का आश्रय लो। तो ये ब्राह्मण नरोत्तम दास ठाकुर के पास जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिरता है। वो कहता है कि मैंने आपको शूद्र कहकर पुकारा है अपराध की भावना से, और आप देखो मेरी स्थिति क्या हो गई है, कुष्ठ रोग से मैं जर्जर हो गया हूँ, तो आप आपके जो चरण कमल है वो मेरे मस्तक में रखो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं आप तो ब्राह्मण हो। फिर भी ये ब्राह्मण नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिरा, उनकी धूल आदि को लिया और उन्होंने उनको कहा, ब्राह्मण ने कहा कि मैं जब ये कुष्ठ रोग से बहुत अधिक पीड़ित होने लगा तो एक दिन मैंने सोचा कि अपने देह को त्याग दो गंगा में जप लगा के। तो उसी रात दुर्गा देवी मेरे स्वप्न में आती है और वो कहती है कि आप क्या करो, जाओ नरोत्तम के चरणों में गिरो, उनसे क्षमा याचना करो, तो इसलिए मैं आया हूँ। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर उस ब्राह्मण को उठाते हैं, आलिंगन करते हैं और आलिंगन करने मात्र से उनकी जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। फिर वो ब्राह्मण कहता है अभी तो मैं शुद्ध हो गया हूँ, बहुत सुंदर लग रहा हूँ, और अभी फिर से अपराध करने की भावना आ जाएगी, आप ऐसा उपाय करो कि मैं पुनः वैष्णव के प्रति अपराध ना करूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि आप क्या करो, सदा सदैव वैष्णव की सेवा में लगते हुए हरि नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कई सारे लीलाएं नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हैं, उनके ऊपर बहुत तीन चार ग्रंथों की रचना हुई है, एक है प्रेम विलास, एक है नरोत्तम विलास और एक है नरोत्तम चरित्र। तो इन ग्रंथों में नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत विशद वर्णन है और किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर पावरफुल थे और उनके शिष्यों का भी वर्णन आता है, नरोत्तम दास ठाकुर ने के प्रति उनके शिष्यों का कितना प्रगाढ़ अनुराग था, आसक्ति थी। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव भी बहुत यह है, प्रशंसनीय है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अंतिम समय में बिल्कुल शांत हो गए थे, अपने शिष्यों को कहा कि मैं अभी जल्दी ही शरीर त्यागने वाला हूँ, आप मुझे गंगा के किनारे ले चलो। वो गंगा में स्नान करने के लिए गए और कहा कि मेरे लिए चिता बनाओ, लकड़ का बना दो चिता जिसके ऊपर मैं शरीर त्यागूंगा, आप मुझे जला देना। तो नरोत्तम दास ठाकुर गंगा में स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद उनके जो शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और भी जो डिवोटीज हैं, हजारों भक्त इकट्ठा हो गए थे। हर उन्होंने स्नान किया और जाकर बिल्कुल बात करना बंद कर दिया, कृष्ण के सरस्मरण में केवल रोया करते थे और जाकर चिता पर लेट गए, बिल्कुल शांत हो गए। और भक्तों का साहस नहीं हो रहा था कि अभी क्या करें, चिता को जलाएं। और नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा था मैं तो शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो फिर कई सारे द्वेषी ब्राह्मण थे जो हमेशा ईर्ष्या रखते थे, तो उन्होंने कहा यही है, इसका जीवन ऐसे ही होगा। हाँ, ये जो गंगा नारायण चक्रवर्ती ब्राह्मण होकर ये शूद्र है, कायस्थ से दीक्षा लिया है, इसने हजारों ब्राह्मणों को दीक्षा दिया है, तो इसका तो ऐसे ही होगा फाइनली। तो सारे ब्राह्मण आज बहुत वहां निंदा कर रहे थे, बोल रहे थे। तो इनके शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती कहते हैं कि हे नरोत्तम दास ठाकुर, हे गुरुदेव, आप क्या करो, ये जो द्वेषी है, अपराधी है, ये ब्राह्मण आज है, ये आपके प्रति ऐसा भयावह अपराध कर रहे हैं कि इनको करोड़ों जन्मों तक नरक में सड़ना पड़ेगा, तो आप प्लीज इनके ऊपर कृपा कीजिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो बिल्कुल बंद हो गए थे बोलना, उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उपदेश देना शुरू करते हैं। हाँ, तो ये सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारे चरणों में गिरते हैं जो द्वेषी ब्राह्मण, और सारे उनसे दीक्षा लेते हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा नहीं, क्योंकि उनको विरह हो रहा था, रोज वो सुनते थे कि वृंदावन में इस वैष्णव ने शरीर त्यागा है, दूसरे वैष्णव चले गए हैं। तो उन्होंने कहा इतने सारे वैष्णव चले गए हैं, उनका संग मुझे नहीं मिला, इसलिए वो गीत उनके मुख से निकला था, जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। केवल भक्तों की न्यूज उनको मिलती थी, अलग अलग अर्जुन के विरह के कारण उनके मुख से ये सारे विरह गीत निकले थे। हाँ, तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मैं गंगा में स्नान करना चाहता हूँ। फिर से गए और उनके दो शिष्य थे, एक थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और दूसरे मुझे याद नहीं आ रहे हैं। उनको कहा कि आप क्या करो, मेरे शरीर में जल डालो और उसको ये करो, ऐसे मसाज करो। तो जल के अंदर गए और गंगा के दोनों किनारे पर हजारों भक्त थे जो हरि नाम का उच्चारण करते जा रहे थे और नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर जल हाथ से डाल रहे थे वो दो उनके शिष्य। और जैसे जैसे जल डाल रहे थे और हाथ अपना उनके शरीर में ऐसे कर रहे थे, तो उसी समय जो उनका शरीर है मेल्ट होने लगा और दूध बनके उस गंगा में विलीन हो गया नरोत्तम दास ठाकुर का सारे वैष्णव के सामने। तो शास्त्र कहते कि नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर कोई सर्व सामान्य जीव के तरह नहीं था, बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर का जो दिव्य शरीर है वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेममय तनु, महाप्रभु का जो प्रेम है उसी प्रेम ने अपने आप को इनकार्नेट किया था, अवतरित अवतार धारण किया था और वो प्रेम का अवतार थे नरोत्तम दास ठाकुर, जिसके कारण उनका शरीर मेल्ट हो जाता है, सारे वैष्णव रो पड़ते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ही पहले आचार्य हैं जिन्होंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल शुरू किया था। पहले गौर पूर्णिमा या चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य तिथि है वो मनाया नहीं जाता था, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गाँव खेतुरी में वो पहला फेस्टिवल मनाया था और सारे गौड़िया वैष्णव को आमंत्रित करके उसको बहुत बड़ा जो रूप है वो प्रदान किया था। तो जब पहला ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया, तो उस दिन जब भगवान के विग्रहों का, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की स्थापना की और फिर उनका अभिषेक आदि किया, तो जब कीर्तन शुरू हुआ तो वो वास्तव में पहला कीर्तन मेला होगा। तो कीर्तन इतना, हजारों भक्त थे, जानवा माता, श्रीनिवास आचार्य, तो कीर्तन हुआ तो सबने कहा कि नरोत्तम आप कीर्तन करो। तो नरोत्तम कहते नहीं नहीं, आप इतने सारे वैष्णव आए हो बंगाल से, जगन्नाथपुरी से, वृंदावन से, आप कीजिए। लेकिन सबने कहा नहीं नहीं, आप कीर्तन करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर को सबने बहुत फोर्स किया। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने जैसे कीर्तन शुरू किया, उनका कीर्तन इतना पावरफुल था कि चैतन्य महाप्रभु को आकृष्ट करने का सामर्थ्य रखता था। तो चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन के बीच में, हजारों भक्त नाश रहे थे, उनके बीच में पंच तत्व के संग में प्रकट हो गए, बल्कि सब अप्रकट हुए थे, हरिदास ठाकुर आदि। तो महाप्रभु पंच तत्व के साथ, अपने पार्षदों के साथ कीर्तन में प्रकट हुए, सारे भक्त देखकर आश्चर्यचकित हो गए पहली गौर पूर्णिमा में। और फिर कुछ ही क्षणों में वो जो दृश्य है वो उनके सामने से अप्रकट हो जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र बहुत विशाल है, विशद है और बहुत इंस्पायरिंग है, शिक्षाप्रद है। नरोत्तम दास ठाकुर से हमें आज प्रार्थना करनी चाहिए उनकी कृपा के लिए। तो जितना प्रेम उनका चैतन्य महाप्रभु के लिए था, थोड़ा सा जो प्रेम है या थोड़ी सी आसक्ति है वो हमारे अंदर आ जाए। और विशेष रूप से उनके जो गीत हैं उनको गाने मात्र से वास्तव में कोई भी व्यक्ति शुद्ध होता है, उसका हृदय तुरंत ही विमल होने लगता है, मल से रहे और विनम्रता से जो हृदय वो भर जाता है। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अविर्भाव तिथि महामहोत्सव की।